장탕. 라타 마타고 제야 군제미야 리 라타 제고 비자나 발라고 제야 기디바레타 जय हो जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धाम जय यशोदानंद घना जय गज जनरंजन जय यशोदानंद घना जय गज जनरंजन जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मदेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री गौरताय की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंद All glories to Simple Devotees, All glories to Simple Devotees, All glories to Simple Devotees, All glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. तो भगवद गीता की जो पुस्तकें रखी हैं, अगर आप लोग हिंदी पढ़ते हैं तो ले लीजिए और खोलिए किताब। आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? आप लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं? हिंदी समझते हैं? जो लोग हिंदी पढ़ते हैं किताब लीजिए। हिंदी समझते हैं आप लोग? हिंदी समझते हैं?
थोड़ा
समझते हैं। कितने लोग हिंदी समझते हैं, हाथ उठाइए। हिंदी तो कोई भक्त गुजराती में अनुवाद करेगा? गुजराती में अनुवाद करेगा कोई? हिंदी से गुजराती? है कोई हिंदी से गुजराती? कौन है? एक आसन लगा दो और हैंड माइक दे दो। हैंड माइक, हैंड माइक है। हरि बोल। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं हिंदी बोलूंगा, आप गुजराती बोलिए, ठीक है? हाँ, हिंदी में बोलूंगा, आप गुजराती में अनुवाद करना, ठीक है? इनको हैंड माइक दे दो। हरि बोल। ला रहे हैं तो मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 10 अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 37, पेज पृष्ठ संख्या 358, 358 सब लोग निकालिए। आपने निकाल लिया? इनका निकल गया और किसको नहीं मिला? सब लोग मेरे पीछे बोलिए। उधर मिला आपको? पीछे मिला आप? इनको मिला पीछे? 358 पेज नंबर, पेज नंबर 358, 358 मेरे पीछे बोलिए। वृष्णी नाम वासुदेवोऽस्मि, पांडवानां धनंजयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनां मुसनाकविः। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पांडवानां धनंजयः, मुनीनामप्यहं व्यासः। आप माइक छोड़ दो, अभी अभी नहीं, बाद में। मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनां मुसनाकविः, वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पांडवानां धनंजयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनां मुसनाकविः। बोलिए।
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि,
बोलो
विष्णुनामासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय
शब्दार्थ बोलिए विष्णी नाम विष्णी कुल में वासुदेव द्वारका वासी कृष्ण अस्मि हूँ पांडवानां पांडवों में धनंजय अर्जुन मुनीनां मुनियों में अपि भी अहम् मैं हूँ व्यासः व्यास देव समस्त वेदों के संकलन करता कवीनां महान विचारकों में उष्णा उष्णा शुक्राचार्य कवि ही विचारक अनुवाद मेरे पीछे बोलिए मैं वृष्णवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए भूमिका में पहला पेज निकालिए भूमिका में पहला पेज देखिए इधर भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग सब लोग मेरे साथ बोले ओम अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकयं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
धर्म श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। देखिए अभी ये प्रवचन 9 बजे तक होगा। आप लोग बैठेंगे 9 बजे तक या आप लोगों को जाना है उठ करके? जाना है फिर ठीक है, कोई बात नहीं, जा सकते हैं। तो श्लोक को फिर से समझेंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा। शांतिपूर्वक चले जाएं, जो जा रहे हैं शांतिपूर्वक चले जाएं, जो सुनने वाले हैं वो कृपा करके आगे आ जाइए। जो सुनने वाले हैं, आपसे बोल रहा हूँ, जो सुनने वाले हैं आगे आ जाइए, जाने वाले शांतिपूर्वक चले जाएं। बात है नहीं शोर करने लगे। आगे आइए, आगे जो सुनने वाले हैं आगे आइए। तो श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक में भगवान अपनी चार विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। पहली विभूति क्या है? वृष्णि नाम वासुदेवोऽस्मि, वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूं। दूसरी विभूति पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में मैं धनंजय यानी अर्जुन। मुनि नाम अपि अहम व्यासा, मुनियों में मैं व्यास हूँ। कवि नाम उसना कवि, और विद्वानों में विचारकों में कौन हूँ? उसना कवि यानी शुक्राचार्य, बहुत श्रेष्ठ विचारक हैं, है ना। तो चार प्रकार की भूतियों का वर्णन हुआ है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण आदि भगवान हैं और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है ना। तो देखिए प्रभुपाद क्या चर्चा कर रहे हैं। पहली विभूति, तो पहली विभूति है वृष्णि वंशियों में वासुदेव। तो आप शब्दार्थ में देख रहे हैं कि वासुदेव का शब्दार्थ क्या लिखा है? द्वारकावासी कृष्ण है ना। तो प्रभुपाद ने जो है शब्दार्थ में भी वासुदेव का अर्थ क्या लिखा है? द्वारकावासी कृष्ण है, यानी वृंदावनवासी कृष्ण नहीं, द्वारकावासी कृष्ण है ना। जो कृष्ण द्वारका में निवास करते हैं है? तो वो कृष्ण है, वृष्णि वंशियों में वो कृष्ण है, द्वारकावासी कृष्ण है ना। क्योंकि तो वृंदावनवासी कृष्ण है, तो वो वृंदावन में रहते हैं, और वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम् न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाते है ना। तो वृष्णि वंशियों में जो श्रेष्ठ हैं वो कौन है? वासुदेव है ना, द्वारकावासी कृष्ण वसुदेव के पुत्र है ना। तो बड़ा रहस्य है कि वसुदेव के पुत्र जो कृष्ण हैं तो चार भुजाओं के हैं, और द्वारका में कृष्ण हमेशा अपनी चार भुजाएं प्रकट करते रहते हैं। दो भुजाएं हैं लेकिन अक्सर चार भुजाएं उनकी दिखाई पड़ती हैं, तो अक्सर अपनी उनकी चार भुजाएं प्रकट हो जाती हैं और गरुड़ पर बैठ के चलते हैं। वृंदावन के कृष्ण कभी गरुड़ में नहीं बैठते हैं, गरुड़ को जानते नहीं चार भुजाएं कभी नहीं धारण करते वृंदावन के कृष्ण। शंख चक्र गदा पद्म इन आयुधों का प्रयोग नहीं करते हैं कृष्ण है। लेकिन जो द्वारका में कृष्ण है तो ये जो है ऐश्वर्य
ऐश्वर्य प्रकट करते हैं अपना, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि कृष्ण आदि भगवान हैं और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वासुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। अब एक दूसरी व्याख्या प्रभुपाद दे रहे हैं। पहली व्याख्या वासुदेव की क्या है, द्वारकावासी कृष्ण जो पिछले वंशियों में द्वारकावासी कृष्ण है ना, लेकिन दूसरी व्याख्या क्या है, बलदेव। तो वासुदेव दोनों को कहा जा सकता है, कृष्ण को भी और बलदेव जी को भी, ये दोनों ही वासुदेव जी के पुत्र हैं, है ना। देवकी के सातवें पुत्र बलदेव जी हैं और आठवें पुत्र कृष्ण हैं, है ना। या बलदेव जी को रोहिणी का पुत्र माना जाए तो भी वासुदेव हैं, पिता तो वसुदेव ही हैं। इसलिए दोनों का अर्थ है वासुदेव। अच्छा, अब प्रभुपाद जो है दूसरा विचार क्या दे रहे हैं, दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं, है ना। तो वृष्णिवंशियों में फिर, है ना, वृष्णिवंशियों में जो वासुदेव हैं, फिर बलदेव जी ही बचे। तो इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ज्यादा उपयुक्त क्या है, वृष्णिवंशियों में वासुदेव, कौन से वासुदेव, बलदेव जी, क्योंकि जो कृष्ण है वो तो वृंदावन में रहते हैं, है ना। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं, है? मतलब जो द्वारका में जो वासुदेव कृष्ण हैं, है ना, वसुदेव के पुत्र कृष्ण हैं, वो भी उनके ही विस्तार हैं। किन के विस्तार हैं, वृंदावन वासी कृष्ण के विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। तो वासुदेव वो, मतलब वो वासुदेव जो है, जो द्वारका वासी कृष्ण वासुदेव हैं, तो वो कृष्ण से भिन्न नहीं है। और चूंकि कृष्ण वृंदावन वासी हैं, है ना, तो यहाँ पर प्रभुपाद ये वासुदेव को अलग कर रहे हैं। द्वारका वासी जो कृष्ण है तो वृंदावन वासी कृष्ण से अलग नहीं है, है ना, वो वृंदावन निवास करते हैं। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। तो प्रभुपाद जो है दूसरा जो प्रबल पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं वो क्या है कि बलदेव जी का जो है यहाँ पर ज्यादा ये अर्थ संगत है, वासुदेव का अर्थ ज्यादा संगत अर्थ बलदेव जी हैं, है ना। क्यों बलदेव जी हैं, क्योंकि तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। जो वृंदावन वासी कृष्ण हैं वो वृंदावन वासी कृष्ण द्वारका में भी जो है उनको वृंदावन की याद आती रहती है और द्वारका में भी उनका मन नहीं लगता। कृष्ण अपने को जो है वृंदावन वासी समझते हैं और जो है नंद यशोदा को ही याद करते रहते हैं। उनका जो है शरीर द्वारका में है लेकिन मन कहाँ रहता है, वृंदावन में रहता है। तो वृष्णिवंशियों में ये जो द्वारकावासी कृष्ण है ये वास्तव में दिखाते तो अपना प्रेम है द्वारका में लेकिन उनका मन है वृंदावन में। दिखावा तो करते हैं कि वे वृष्णिवंशी हैं, है? लेकिन असली जो है असल में तो वे नंद यशोदा के पुत्र हैं, तो वृष्णिवंश से उनका कोई संबंध नहीं है। द्वारका में भी जो कृष्ण है प्रभुपाद ही लिखते हैं, है ना। तो प्रभुपाद की व्याख्या बहुत गहरी है, है ना। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है वृंदावन वासी कृष्ण से, क्योंकि उनके अंशी जो है वृंदावन में निवास करते हैं। तो वे वृंदावन, शरीर उनका द्वारका में है लेकिन मन उनका हमेशा वृंदावन में रहता है, है ना। अतः इस श्लोक में आकर वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए। तो वृष्णिवंशियों में बलदेव जी, तो बलदेव जी जो है वृष्णिवंशियों में, मतलब यहाँ समझना चाहिए कि वे जो है, मतलब वृष्णिवंशियों को क्या करते हैं, मतलब संगठित करते हैं, और जहाँ एक दूसरे से कुछ मतभेद होता है तो बलदेव जी उस मतभेद को दूर करते हैं और परस्पर मिलाते हैं, किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, है कोई वैमनस्य ना हो। तो यहाँ बलदेव या बलराम माना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं, इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। तो बलदेव जी जो है समस्त अवतारों के उद्गम है, क्योंकि कृष्ण के सबसे निकटतम अंश विस्तार है कृष्ण के बाद बलदेव जी, फिर बलदेव जी से फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब चतुर्व्यूह होते हैं। और वृंदावन द्वारका में जो चतुर्व्यूह हैं, ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये बलदेव जी से ही निकले हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि बलदेव जी आगे भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश कहते हैं, व्यक्तिगत स्वकीय अंश कहते हैं। ये सब क्या है? ये विष्णु तत्व हैं, स्वांश, निकटतम अंश। चाहे हम वासुदेव, द्वारकावासी वासुदेव कहें या बलदेव जी को कहें, जितने भी हैं तो कृष्ण के सब ये क्या हैं? स्वांश हैं, हैं यानी विष्णु तत्व हैं। और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्न अंश कहलाते हैं, पृथकीकृत अंश कहलाते हैं। वो कौन है? जीवात्मा है। हम सब जीवात्माएं क्या हैं? विभिन्न अंश, है ना। तो दो प्रकार के अंश हैं, स्वांश और विभिन्न अंश, है ना। तो जो विभिन्न अंश होते हैं तो ये माया से बन जाते हैं, ये माया से बंधे हैं। अगर कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करेंगे। ये विभिन्न अंश जो जीव हैं तो ये जो है बड़े जो है सूक्ष्म अंश हैं, अणु, अणु हैं ये। लेकिन जितने कृष्ण के स्वांश हैं ये सब कृष्ण के साथ एक ही हैं, कृष्ण के बराबर सब में शक्तियाँ हैं और माया के स्वामी होते हैं। ये सब कृष्ण के जो स्वांश हैं उसी प्रकार से कृष्ण के ही समान हैं, जैसे कि एक दिए से दूसरा दिया जले तो बराबर प्रकाश होता है। तो उसी प्रकार से जितने भी विष्णु तत्व हैं, अवतार हैं, तो ये सब कृष्ण के स्वांश हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, पांडु पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात हैं, वे समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम हैं, अतः कृष्ण स्वरूप हैं, है ना। तो यहाँ पर धनंजय की बात, जो भगवान धनंजय का नाम ले रहे हैं, अर्जुन अर्जुन से ही बोल रहे हैं, भगवान अर्जुन को ही बोल रहे हैं, अर्जुन से ही भगवान बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? पांडवा नाम धनंजया, मैं पांडवों में धनंजय हूँ, है ना। तो पहली बात तो ये समझना है कि जब भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कितना भी बोल रहे हैं, तो इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि भगवान जो है ये सब भगवान बन गए। जितने भी विभूतियाँ भगवान ने बतलाई हैं तो ये भगवान नहीं है। लेकिन जब भगवान बता रहे हैं कि ये हैं, ये मैं ये हूँ, तो हमें क्या समझना चाहिए? कि भगवान की शक्ति से, भगवान के तेज के एक अंश से जो है इनमें ये शक्तियाँ आई हैं, ये तेज आया, ऐसा समझना चाहिए। कि भगवान से स्वतंत्र नहीं है कोई भी, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान जब कह रहे हैं कि मैं ये हूँ, है ना। जैसे कि पहले उन्होंने बहुत कुछ कहा, है ना, जैसे जुआ कहा कि मैं जुआ हूँ, छल करने वाले में जुआ हूँ, है ना। और मछलियों में मगरमच्छ हूँ, तो ये नहीं समझना कि मगरमच्छ भगवान है। भगवान जब बताते हैं मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ, है ना, तो इसका मतलब तुलना कर रहे हैं भगवान कि समस्त जीवों में भगवान उतने ही श्रेष्ठ हैं जैसे मछलियों में मगरमच्छ श्रेष्ठ होता है, है ना। सब विष्णु वंशियों में जो है जितना श्रेष्ठ वासुदेव हैं यानी बलदेव जी हैं, उसी प्रकार से सब जीवों में भगवान श्रेष्ठ हैं, कृष्ण श्रेष्ठ हैं। तो ये एक प्रकार की तुलना भी है। पहली बात तो यह है कि जितने भी ये विभूतियाँ हैं तो उनके पास जो भी शक्ति है, जो भी तेज आया है, ये कृष्ण से ही आया है, है ना। कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है कोई। और दूसरी बात यह है कि कृष्ण अपनी तुलना करें समस्त जीवों में, कि समस्त जीवों में जो है मैं उसी प्रकार से श्रेष्ठ हूँ जैसे विष्णु वंशियों में बलदेव जी श्रेष्ठ हैं या पांडवों में धनंजय श्रेष्ठ हैं। पांडवों में धनंजय श्रेष्ठ हैं, है ना। हालांकि पांचों पांडव दिव्य हैं, देवताओं के पुत्र हैं और उनमें बड़े दिव्य गुण हैं, अलौकिक गुण हैं, विशेष शक्तियां हैं, लेकिन अर्जुन फिर भी विशेष हैं। पांडवों में अर्जुन विशेष हैं और ये बीच में भी हैं, अर्जुन बीच में भी हैं। दो पांडव ऊपर हैं उनके, उससे बड़े हैं उम्र में, और दो छोटे हैं, अर्जुन बीच में है ना, और अर्जुन श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है अर्जुन, है ना। कृष्ण के सखा, कृष्ण के सबसे अधिक निकट अगर कोई है तो अर्जुन है। कृष्ण तो ये भी कहते हैं कि मुझे जो है द्वारका में जो मेरी पत्नियां हैं या मेरे संबंधी हैं, मेरे पुत्र हैं, कोई मुझे इतना प्रिय नहीं जितना अर्जुन प्रिय है, कृष्ण ये भी कहा। और अगर शक्ति में देखा जाए, वीरता में देखा जाए, तो अर्जुन की वीरता अद्वितीय है। महाभारत युद्ध जो हो रहा है अर्जुन के बल पर ही हो रहा है। वो तो पहले दिन गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया, तो गीता का उपदेश सुनकर के अर्जुन युद्ध के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन अर्जुन ने पहले दिन युद्ध ही नहीं किया, युद्ध से हटे भी नहीं, युद्ध में रहे और युद्ध में जो है अर्जुन का रथ खड़ा रहा और अर्जुन दिन भर युद्ध को देखते रहे, लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं किया। भीमसेन ने ऐसा युद्ध किया कि खून की नदी बहा दी, भीमसेन ने ऐसा युद्ध किया कि खून की नदी बहा दी। और भीमसेन के पास शारीरिक बल इतना है, हाथियों को पटक पटक करके उन्होंने मतलब ऐसा मारा उनको जो है, और है ना सैनिकों को भी मारा, खून की नदी बहा दी। लेकिन अंत में उनके सेनापति श्वेत मारे गए, पांडवों के सेनापति श्वेत मारे गए, और युधिष्ठिर ने जो है पहले दिन तो अपनी पराजय ही मानी, और पहले दिन की जो है रात में जब मतलब एकत्रित हुए सब पांडव सेना के लोग, तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा कि देखिए कृष्ण, भीष्मदेव जो है हमारी सेना का जो है इतना संहार कर रहे हैं, अर्जुन युद्ध में कोई उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। अर्जुन हमारी सेना में केवल अर्जुन ही है जिनके पास दिव्य अस्त्र हैं, कौरवों की सेना में तो बहुत लोग हैं दिव्य अस्त्रों को जानने वाले, हमारी सेना में केवल अर्जुन ही है दिव्य अस्त्रों को जानने वाले। भीमसेन ने जिस तरह से कौरवों की सेना मारी है, हालांकि बहुत संहार किया है, लेकिन भीमसेन अगर इस प्रकार से संहार करें 100 साल तक तो भी कौरवों की सेना का अंत नहीं होगा। 100 साल तक भी भीमसेन अगर इस प्रकार से कौरव सेना का संहार करें, 100 साल में भी ये सेना नष्ट नहीं होगी, अर्जुन के बिना काम नहीं चलेगा, है ना। और भीष्मदेव से युधिष्ठिर महाराज को बहुत चिंता हो रही है कि भीष्मदेव के सामने तो कोई टिक नहीं सकता और अर्जुन युद्ध में उत्साह नहीं दिखा रहा है ना। कृष्ण से ऐसा जो है अपनी चिंता प्रकट करते हैं युधिष्ठिर महाराज ना। तो कृष्ण ने जो है युधिष्ठिर की चिंता जो है दूर की कि आप बिल्कुल चिंता न करिए, अर्जुन जो है भीष्म का वध कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि आप बिल्कुल चिंता ना करिए, अर्जुन भीष्म का वध कर सकते हैं और आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं भीष्म का वध कर सकता हूँ, मैं कर लूँ भीष्म का वध, आप बिल्कुल चिंता ना करिए, भगवान कृष्ण कहते हैं। इन कहने का मतलब यह है कि पांडवों में जो शक्ति अर्जुन के पास है वो किसी के पास नहीं है। जिस समय राजसूय यज्ञ हुआ तो राजसूय यज्ञ में चार भाइयों को युधिष्ठिर महाराज ने अपने चार भाइयों को चार दिशाओं में भेजा, सहदेव को दक्षिण दिशा में भेजा और भीमसेन को पश्चिम दिशा में, फिर जो भी हो अर्जुन को उत्तर दिशा में भेजा, अर्जुन को उत्तर दिशा में भेजा है ना। तो पूर्व दिशा में भी जो है कितना समुद्र है, ज़्यादा मतलब जमीन नहीं है, हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ से युधिष्ठिर ने जो है पूर्व दिशा में अपने एक भाई को भेजा, पश्चिम दिशा में एक भाई को भेजा, दक्षिण दिशा में तो समुद्र मिल जाता है और जो जम्बूद्वीप है उसकी सीमा मिल जाती है समुद्र में। लेकिन उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में तो बहुत लंबा है जम्बूद्वीप, बहुत लंबा है। उत्तर दिशा में अर्जुन को भेजा और अर्जुन ने जो है सभी वर्षों में जाकर के विजय प्राप्त की। तो ये विशेष, ये जो विशेष बात है ये अर्जुन की है। उत्तर दिशा में अर्जुन गए तो सभी वर्षों में विजय प्राप्त की। उत्तर में भारतवर्ष से उत्तर में हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष, इलावृत वर्ष और फिर उत्तर कुरु वर्ष, हिरण्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, भद्राश्व वर्ष, केतुमाल वर्ष, ये सब वर्ष हैं। भारतवर्ष के अलावा आठों वर्ष तो उत्तर दिशा में ही है। जम्बूद्वीप में दक्षिण दिशा में ही बिल्कुल किनारे में भारतवर्ष है। तो अर्जुन की जो यात्रा है वो बहुत गौरवपूर्ण है, बहुत गौरवपूर्ण है। यहाँ तक कि अर्जुन ने सुमेरु पर्वत का भी दर्शन किया। उस स्थान में कोई जाए तो सुमेरु पर्वत का दर्शन नहीं हो सकता। अभी भी सुमेरु पर्वत का दर्शन नहीं हो रहा है, किसी कैमरे में भी सुमेरु पर्वत का चित्र नहीं आ रहा है। सुमेरु पर्वत है लेकिन कैमरे से भी जो है सुमेरु पर्वत का चित्र नहीं आ रहा है। सुमेरु पर्वत जो है जम्बूद्वीप के बिल्कुल बीच में स्थित है और 1,00,000 योजन ऊंचा है। 1,00,000 योजन 12 किलोमीटर का होता है, 12,00,000 किलोमीटर ऊंचा है सुमेरु पर्वत। है जमीन में जो है वो नीचे जो गड़ा हुआ है, कील की तरह गड़ा हुआ है, है? तो 16,000 योजन जो है जमीन के अंदर धंसा हुआ है, है? तो जमीन के ऊपर कितना है, 84,000 योजन जमीन के ऊपर है और कीली की तरह है सुमेरु पर्वत, कील की तरह शंकु के आकार का। ऊपर जो है 32,000 योजन उसका जो है विस्तार है, व्यास 32,000 योजन का व्यास है और नीचे का जो व्यास 16,000 योजन का है सुमेरु पर्वत, है ना। सुमेरु पर्वत इतना दिव्य है, सोने का बना हुआ है। लेकिन अर्जुन ने दर्शन किया सुमेरु पर्वत का, अर्जुन उस स्थान में गए दर्शन किया। तो कोई सामान्य व्यक्ति जो है ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अर्जुन जो है गए। तो ये सब जो है मतलब अर्जुन का ही पुरुषार्थ है, अर्जुन की ही शक्ति है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान बताते हैं पांडवानाम धनंजया, कि पांडवों में मैं धनंजय हूँ। और वैसे भी अर्जुन नर नारायण ऋषि में से जो है नर ऋषि के अवतार हैं, तो भगवान कृष्ण के संगी हैं अर्जुन, नर ऋषि हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही नर नारायण ने अवतार लिया अर्जुन और कृष्ण के रूप में। तो पांडवानाम धनंजय जो भगवान बता रहे हैं, तो अर्जुन विशेष पांडवों में बहुत विशेष हैं। इसके बाद फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया और व्यास को कृष्ण का एक अवतार, व्यास कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं। यहाँ थोड़ा छपाई में गलत है और व्यास को लिखा है, को नहीं होना चाहिए, और व्यास कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं, अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं। तो व्यास देव जी जो है मुनियों में व्यास मुनि, तो मुनि का एक अर्थ होता है जो मननशील हो, जो जो है विशेष रूप से मनन करे, चिंतन करे, तो उसको जो है मुनि कहते हैं। तो ऐसे मुनियों में व्यास है ना। तो व्यास मुनि जो है एक ऐसे मुनि है जो कि मानवता के कल्याण का ही हमेशा चिंतन करते हैं कि किस प्रकार से मानवता का कल्याण होगा, और उनके पास वो शक्ति है देखने की कि भविष्य में क्या होने वाला है, और भविष्य में लोग जो है मतलब कलयुग में कितने मूर्ख होंगे, कम बुद्धि वाले होंगे, आयु भी बहुत कम होगी, है ना। तो इस कारण से उन्होंने महाभारत की भी रचना की, व्यासदेव ने वेदों की भी चार विभाजन कर दिए, और उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुए। उनको लग रहा था कि मैंने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है, संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा है। तो नारद जी ने उनको जब बताया कि आपने धर्म अर्थ और काम का जितना वर्णन किया है उतना वर्णन आपने शुद्ध भक्ति का नहीं किया, तो आप शुद्ध भक्ति का वर्णन करिए, एक ऐसा शास्त्र लिखिए शुद्ध भक्ति का जिसमें वर्णन हो, तब आपको संतुष्टि होगी, है ना। तो नारद जी की इस बात से जो है व्यासदेव ने फिर श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। तो ये व्यासदेव जो है उनके बारे में कहा भी जाता है कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम विद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि करते किम वा परेरीश्वरः। श्रीमद् भागवत जो है महामुनि के द्वारा रचित है। महामुनि कौन है? व्यासदेव। महामुनि करते किम वा परेरीश्वरः, अन्य शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृति भी शुश्रूष तत्नात्। जो पुण्यात्मा व्यक्ति अगर शुश्रूष हो जाए, श्रीमद् भागवत को सुनने की इच्छा करे, तो तुरंत ही हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, है ना। व्यास देव की जो है मतलब कितनी शक्ति और उनकी कितनी कृपा, ये सोचिए। श्रीमद् भागवत जो उन्होंने दिया है मानव समाज में, व्यास देव की कितनी कृपा है। भगवद गीता के लिए भी कहा गया है, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्ला अरविंदा यत पत्र नेत्र येनत्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। कि हे व्यास देव, आप विशाल बुद्धि, आपकी बुद्धि बहुत विशाल है, आपको नमस्कार है। फुल्ला अरविंदा यत पत्र नेत्र, फुल खिले हुए कमल के जो है चौड़े पत्ते के समान आपके नेत्र हैं। ये न तो या भारत तैल पूर्णा, तो आपने ही जो है भारत, जो महाभारत जैसा एक तेल से भरा हुआ बर्तन में प्रज्वलित हो ज्ञानमय प्रतिभा, भगवत गीता रूपी जो ज्ञानमय दिया जलाया, दीपक ज्वाला, है ना। तो जैसे तेल के बर्तन में जो ज्वाला होती है उसी से प्रकाश होता है, प्रकाश उसी से होता है, है ना। लेकिन वो प्रकाश जो है, जो ज्वाला है, तो वो तेल के कारण जलती है, तेल के कारण ज्वाला होती है, है ना। लेकिन ज्वाला से ही अंधकार दूर होता है। उसी प्रकार से महाभारत का जो 1,00,000 श्लोकों का इतना बड़ा ग्रंथ है आपने जो बनाया है, वो किस लिए बनाया है कि इन कथाओं के माध्यम से लोग गीता को पढ़ें, इन कथाओं के माध्यम से लोग गीता को पढ़ें, और गीता आपने जो है मतलब उसमें डाली है ना। तो तेल से पहले जो है रात भर प्रकाश पैदा करने के लिए ये सब चीज़ें नहीं थी, बिजली वगैरह नहीं थी, बिजली के बल्ब नहीं थे, है ना। रात भर प्रकाश पैदा करने के लिए एक बड़ा तेल का बर्तन रखते थे, उसमें तेल भर देते थे, और एक जो है बत्ती उसमें जो है जला देते थे, तो वो जो है जलती रहती थी। तो तेल एक बड़ा जो है तेल से भरा हुआ बर्तन है, तो तेल से जो है वो जो है रात भर जलता रहता था। तो तेल की मात्रा बहुत होती है, और जो उसकी जो लौ है प्रकाश ज्योति है वो तो बहुत छोटी होती है, लेकिन प्रकाश तो उसी से पैदा होता है, अंधकार तो उसी दूर होता है। उसी प्रकार से महाभारत के अंदर जितनी भी कथाएं हैं वो तेल का काम करती हैं, तेल का काम करती हैं, और उसी तेल से जो है क्या जलता है, ये ज्योति जलती है, है ना। तो ये जो कथाएं हैं, महाभारत की कथाएं हैं, उनको सुनने से व्यक्ति के अंदर उतनी शुद्धि होती है जिससे वो भगवद गीता को फिर वो सुनेगा और समझेगा। तो तेल की सहायता से ही जो है ये जलती है। उसी प्रकार से महाभारत का एक बहुत बड़ा उन्होंने व्यास देव ने जो है बर्तन, तेल से भरा हुआ बर्तन तैयार किया है और उसके अंदर जो है जलाई है ज्योत है, किसकी? भगवत गीता की, है ना। ये न त्वया, तो ये क्या है? ये ऐसे मुनि हैं। तो ये ऐसे सामान्य मुनि नहीं है जो कि केवल मनोधर्मी करें। मुनि का मतलब होता मनोधर्मी करे। नासो मुनिर यस्य मतम न भिन्नम, तो तब तक जो है उस व्यक्ति को मुनि नहीं कहा जा सकता है जब तक उस अपना कोई भिन्न मत ना दे, और भिन्न मत देगा तो गलत ही देगा। सात साधु आचार्य के को छोड़ करके अपने कुछ अलग से कुछ व्याख्या करे, कुछ फिलॉसफी दे, है ना, तो वो मुनि कहलाते हैं। तो जितने मुनि हैं वो सब जो है अपने अपने मत देते हैं, अपनी जो है प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए अपना कुछ मत देते हैं, है ना, तो मुनि कहलाते हैं। लेकिन व्यास मुनि क्या है? बिल्कुल भगवान का ही मत देने वाले हैं। तो मुनि मुनि नाम अपि हम व्यास है, मुनियों में मैं व्यास मुनि हूँ, है ना। तो हाँ भगवान कहते हैं आगे इसमें भगवान ने क्या लिखा है, क्षमा करिए, प्रभुपाद ने लिखा है कि मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया है, और व्यास को कृष्ण का किए गए अवतार भी माने जाते हैं। व्यास जो कृष्ण के साहित्य के अवतार हैं। अच्छा, फिर अब चौथी विभूति क्या है? कवि नाम उस ना कवि, कवियों में विचारकों में कौन है? शुक्राचार्य। तो प्रभुपाद लिखते हैं कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवि उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। तो शुक्राचार्य जो है ये भी कृष्ण की एक विभूति है, बहुत विशेष, बहुत विशेष। असुरों के गुरु शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, है ना, और असुरों के गुरु इसका मतलब वो भक्त नहीं हो सकते। असुरों का गुरु जो भी बनेगा वो भक्त कैसे हो सकता है? भक्त नहीं हो सकता है, है ना। और भगवान कहते हैं भक्तिया माम अभिजानाति यावान निश्चास्मी तत्त्वतः, तत्व से कोई व्यक्ति मुझे तभी जान सकता है भक्ति के द्वारा, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति भक्ति के बिना भी अगर कृष्ण को जान ले तो कुछ विशेष विभूति होगी भगवान की। तो शुक्राचार्य ऐसे हैं कि भक्ति के बिना भी कृष्ण को जान सकते हैं, जैसे वामन देव आ रहे हैं, है ना। तो शुक्राचार्य ने जो है बलि महाराज को बताया कि ये जो है वामन देव है और ये जो है विष्णु हैं, और तुम्हारे साथ जो है ये छल करेंगे, और तुम जो है तुम से जो है ये तीन पग के बहाने दो पग में ही तीनों लोग नाप लेंगे, तो तुम तीसरा पग तुम क्या करोगे? तुम तीसरा पग तुम वैसे भी नहीं दे पाओगे, इसलिए चाहे तुम मना कर दो, दान देने के लिए मना कर दो, पहले से मना कर दो। तो शुक्राचार्य ने जो है भगवान विष्णु का जितना भी कपट था वो सब जो है खोल दिया बलि महाराज के सामने। है कौन ऐसा हो सकता है भक्ति के बिना भी जो है भगवान को जान सके, वो भी भगवान के द्वारा दी हुई कोई विशेष शक्ति है शुक्राचार्य में, है ना। तो सामान्य रूप से कोई भी नहीं जान सकता है भक्ति के बिना भगवान को, है ना। तो शुक्राचार्य में ऐसी विशेषता है, है ना। और जैसे में हिरण्यकशिपु और प्रह्लाद का संघर्ष चल रहा था, आपस में बड़ा विरोध चल रहा था, बड़ा तनाव चल रहा था, है ना। और जब हिरण्यकशिपु को जो है जब पता चला कि जितने भी प्रयास किए गए प्रह्लाद को मार डालने के उनमें सफलता नहीं प्राप्त हुई है, तो हिरण्यकशिपु ने क्या सोचा कि प्रह्लाद की अपनी ही शक्ति है जिससे उसकी वो अपनी रक्षा कर रहा है। हिरण्यकशिपु मतलब नहीं समझ रहा था कि भगवान विष्णु की शक्ति और विष्णु में कितनी शक्ति है वो तो नहीं जानता था, ये अपनी शक्ति से अपनी रक्षा कर रहा है, है ना। और फिर हिरण्यकशिपु को डर हो गया कि अगर ये मेरे पास आएगा और उसको जो है याद आएगा कि मैंने ही इसको मार डालने के लिए आदेश दिए है, तो ये मुझे मार सकता है। हिरण्यकश्यप को चिंता हो गई, क्योंकि पहले तो गोद में बैठाया था और तुमने क्या सीखा, सबसे अच्छा उपदेश तुमने क्या सीखा, और जब प्रहलाद ने नवदा भक्ति का वर्णन किया तो फिर उसने फेंक दिया गोद से, और फिर ये कहा कि मेरी आंखों से दूर ले जा करके इसका वध कर दो, और किसी भी उपाय से वध कर दो, जो भी उपाय हो वध करने के, और सब उपाय किए गए, ये हिरण्यकश्यप की आंखों के सामने नहीं किए गए, क्योंकि वो पिता हो करके अपने पुत्र का वध अपने हाथ से नहीं करना चाहता था, और बड़ा कष्ट था, और बड़े कष्ट से कहा कि हमारे असुरों में जो है असुर कुल में ये बहुत खतरनाक बालक है, क्योंकि विष्णु की भक्ति का जहर इसके अंदर भरा हुआ है, और असुरों में ये जहर डाल देगा, संक्रामक है ये बालक है, तो मेरी आंखों से दूर ले जाकर इसका वध कर दो। और जब उसने सुना कि प्रहलाद का वध नहीं हो सका, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई प्रहलाद को अपने सामने बुलाने की या प्रहलाद के पास जाने की, और उसको बहुत डर पैदा हो गया कि अगर मैं प्रहलाद के पास जाऊं या प्रहलाद मेरे सामने आए तो ये मुझे मार डालेगा, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है, और मैंने ही आदेश दिया है, तो ये समझेगा कि मैंने आदेश दिया है, तो जिन्होंने इसको मार डालने का प्रयास किया उनको तो इसने नहीं मारा प्रहलाद ने, ये मुझे तो मार देगा, क्योंकि जो मारना चाहते थे प्रहलाद को, तो वास्तव में तो मेरे आदेश से मारना चाहते थे, तो जब ये मुझे देखेगा तो मुझे जो है समझ करके कि मैं ही जो है मतलब इस कारण हूँ कि मैं प्रहलाद को मारना चाहता हूँ, तो मुझे मार डालेगा, तो बहुत डर गया, और अब वो जो है सोच नहीं पा रहा कि मैं क्या करूँ। तो सन्नमर्क ने जो शुक्राचार्य के पुत्र थे उन्होंने क्या कहा, कह रहे आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, ये बच्चे हैं, ये तो थोड़ी सी बात में जो है बहला दो और भूल जाते हैं, तो कुछ मतलब ऐसी चिंता की बात नहीं है कि जो है मतलब याद करेगा कि आपने इसको मारने का आदेश दिया था। अभी प्रहलाद के बारे में क्या करना है, प्रहलाद को त्याग करना है, असुरों के समाज से निकाल देना है, या इसको असुरों के समाज में रखना है, और प्रहलाद के साथ कैसा व्यवहार करना है, इस विषय में हमारे पिता जब शुक्राचार्य जी आएंगे तो आप जो है उनके निर्णय के अनुसार आप वैसा कार्य करिए प्रहलाद के बारे में। लेकिन जब तक हमारे पिताजी नहीं आते शुक्राचार्य, तब तक हमारे आश्रम में इसको रखिए, इसको बांध करके रखेंगे हम प्रहलाद को, और आसुरी शिक्षा भी प्रदान करते रहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने कहा, तो हिरण्यकश्यप इस बात पर जो है राजी हो गया कि ठीक है शुक्राचार्य जी आएंगे हमारे गुरु, तो उनके आदेश के अनुसार फिर मैं प्रहलाद के साथ व्यवहार करूंगा कि कैसा मुझे व्यवहार करना है प्रहलाद के साथ। लेकिन शुक्राचार्य नहीं आए, शुक्राचार्य जी को पता था कि क्या होने वाला है, तो शुक्राचार्य जी नहीं आए, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि मतलब वो विचार करने में बहुत आगे हैं, उनको पता था कि क्या होने वाला है ना, तो वो खतरे में नहीं पड़ना चाहते थे, तो इसलिए शुक्राचार्य जी नहीं आए, है ना। तो इस तरह से जो है शुक्राचार्य भगवान की एक विभूति है ना। बलि महाराज के भी यज्ञ में जब वामन देव के विरुद्ध शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज को समझाया कि तुम दान मत दो, और बाद में फिर जो है भगवान वामन देव ने बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया, फिर बलि महाराज की निंदा की, और ये भी कहा कि इसने अपने गुरु की बात भी नहीं मानी, इसने अपने गुरु की बात भी नहीं मानी, तो वामन देव भी शुक्राचार्य के पक्ष में बोल रहे थे, इसने अपने गुरु की बात नहीं मानी, और ये अपने को जो है मतलब बहुत बड़ा इसके अंदर इतना घमंड है, हाँ कि इसको अपनी संपत्ति का इतना घमंड है, हाँ इस तरह से बलि महाराज की निंदा की, है ना। और बाद में जब बलि महाराज को सुतल लोक में भेज दिया, हाँ अब जो है वामन देव का अधिकार हो गया हर चीज पर, तो वामन देव ने फिर शुक्राचार्य जी से कहा कि अब आप जो है अपने यजमान का यज्ञ पूरा करो, यज्ञ के बीच में ही ये सब बाधा आ गई थी, और बलि महाराज जो है बांध दिए गए और सदर लोग भेज दिया वामन देव ने। अब वो यज्ञ जो है अधूरा पड़ा था, तो वामन देव ने शुक्राचार्य जी से कहा कि अब आप जो है उस यज्ञ को पूरा करिए, जिसका आप यज्ञ कर रहे थे उस यज्ञ को आप पूरा करिए। तो शुक्राचार्य जी क्या कहते हैं, शुक्राचार्य जी ने ही कहा मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालारे वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। शुक्राचार्य जी ने ही कहा है? क्या कहा कि मंत्र का जो कुछ भी कमी हो, तंत्र की कमी हो और स्थान की समय की और वस्तु की कोई भी कमी हो, तो सब कमी दूर हो जाती है आपके नाम कीर्तन के द्वारा। जब आपके नाम कीर्तन के द्वारा ही सब कमियां पूरी हो जाती हैं, तो आप लोग साक्षात यहाँ आ गए, तो फिर कौन सी कमी रह गई? तो यज्ञ करने की अब आवश्यकता नहीं है। अब तो आप आदेश दे रहे हैं तो मैं कर देता हूँ यज्ञ, यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शुक्राचार्य जी ने ही कहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि शुक्राचार्य जी इतने विचारशील हैं कि जानते हैं कोई व्यक्ति भक्ति के द्वारा ही जिन रहस्यों को जान पाता है, उन रहस्यों को शुक्राचार्य बिना भक्ति के भी जान सकते हैं। ये कैसे? भगवान की विशेष शक्ति है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। हाँ जी, शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी, मृत संजीवनी विद्या थी शुक्राचार्य के पास। तो जब असुरों और देवताओं का युद्ध होता था, तो शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के द्वारा असुरों को जीवित कर देते थे। और बृहस्पति के पास नहीं थी, तो सब देवताओं ने फिर जो है बृहस्पति से कहा कि क्या किया जाए। तो बृहस्पति का जो पुत्र कच्छ था, तो वो शुक्राचार्य जी के पास आया शिष्य बनने के लिए। और शुक्राचार्य जी को पता था कि शत्रु पक्ष का ये व्यक्ति है, मेरा शिष्य बन करके आया है। तो फिर लेकिन शुक्राचार्य अपने नियम के पक्के थे, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है कि शत्रु भी अगर शिष्य बनता है तो उसको शिष्य बनाओ और उसको जो है शिक्षा दो। तो कच समर्पित था, तो उन्होंने अपने शिष्य बना लिया। और फिर जो है जो असुर लोग थे उनके लिए एक बड़ी तनाव की बात हो गई कि ये तो जो है देवताओं की ओर से ये व्यक्ति आ गया है और हमारे गुरु का शिष्य बन गया है। तो कच्छ को जो है असुरों ने कई बार मार डाला और शुक्राचार्य जी ने जो है उसको जीवित कर दिया, कच्छ को मार डाला है ना। और फिर एक बार तो ये भी हुआ, असुरों ने सोचा कि ये तो बड़ी समस्या हो गई है, कच्छ को हम बार बार मार डालते हैं और हमारे गुरु महाराज जिंदा कर देते हैं। तो कच्छ को मार करके और जला करके उसकी भस्म में कुछ शराब में मिला करके और गुरु जी को पिला दी तब जब शुक्राचार्य जी को जब पता चला, उन्होंने मित्र संजीवनी विद्या से बोला कि बेटा कच्छ तुम कहाँ हो, तो उसने आवाज़ दी गुरु जी अब मैं आपके पेट में आ गया हूँ। बोले अच्छा, तो अब देखो ऐसा है कि तुमको अभी मैं मृत संजीवनी विद्या देता हूँ, मैं तुमको अपनी मृत संजीवनी विद्या देता हूँ, इस विद्या को तुम प्राप्त कर लो और मैं तुम्हें जीवित करूँगा तो मैं मर जाऊँगा, मेरा पेट फाड़ करके तुम जीवित होगे हैं, तो मैं मर जाऊँगा तो फिर तुम जो है उस विद्या से मुझे जीवित कर लेना। इस प्रकार से मतलब शुक्राचार्य ने कच्छ को जीवित किया और उनका पेट फाड़ करके कच्छ जीवित हो गया। और जब कच्छ ने फिर जो है मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य को जीवित किया, तो इस प्रकार से कच्छ को जो है मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई है ना। धनंजय, हाँ अच्छा, ये अच्छी बात बता रहे हैं हरिवीर प्रभु कि धनंजय नाम जो अर्जुन का है, इसमें जो है अर्जुन उत्तर दिशा में जब गए थे तो बहुत धन लाए थे, असीमित धन लाए थे उत्तर दिशा में है ना, तो इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ा। उन्होंने धन को जीता है ना।
और व्यास सत्र भी जब उन्होंने वेद को अलग अलग
विस्तार, व्यास का मतलब विस्तार है, वेदों को विस्तृत किया, तीन वेद थे, तीन वेद से उन्होंने चार वेद बनाए। एक वेद था सत्युग में, पर त्रेता में सत्युग से एक वेद से तीन वेद हुए। तो ऋक् साम में जो ये गीता में भी तीन ही वेदों का नाम आता है, ऋक् साम में जो रेवजा है ना, ये व्यास ने ही तीन वेदों के चार वेद बनाए। इन चार वेद कैसे बनाए, तीन वेदों के मंत्रों को छांट छांट करके चार वेद में उन्होंने विभाजित किया है। कोई अलग से थोड़ी अथर्वेद अलग से नहीं बनाया है, तीन वेद के मंत्रों को ही चार वेद के मंत्रों में उन्होंने मतलब छांट करके बनाया है, इसलिए उनको वेद व्यास कहा जाता है। उसना शुक्राचार्य के पिता का नाम, शुक्राचार्य के पिता का नाम देखना पड़ेगा, भागवत में भी है, भृगु वंश में है, भृगु के वंश में धाता और विधाता ये दो पुत्र हुए भृगु के, फिर विधाता के वंश में हुए शुक्राचार्य, देखना पड़ेगा उसमें आता है। ओसनस, ओसनस के नहीं, ओसनस तो कहेंगे ओसना का पुत्र है, शुक्राचार्य के पुत्र का कहेंगे ओसनस, ओसनस है। अच्छा देखना पड़ेगा, लेकिन भागवत में कुछ और ही नाम है मेरे ख्याल से, ओसनस नहीं है, कुछ और ही नाम है, देखना पड़ेगा शुक्राचार्य के पिता का नाम क्या है। धाता विधाता हुए उनके दो पुत्र हुए ऋषि वंश में, भृगु वंश में शौनक मुनि भी भृगु वंश में है, भार्गव कहा जाता है भृगु वंश, भृगु वंश में परशुराम जी भी हुए, भार्गव कहलाते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय, जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय।